नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालर्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं मिली हैं।
ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एक ऐसे पहल की शुरुआत करना है जिसका उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। कार्यक्रम के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच जल संसाधन आकलन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति केवल आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति में नहीं बल्कि उसकी समृद्ध सभ्यतागत चेतना और नैतिक मूल्यों में निहित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम सिंधु कुंभ नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की विरासत का संरक्षण देश निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा तक आसान पहुंच हर बेटी का अधिकार है और ऐसी पहल छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और जनहितकारी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि से दिल्ली का निर्माण मजबूत स्थानीय बुनियादी ढांचे और जन भागीदारी से ही संभव है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पक्षियों के लिए जल पात्र स्थापित किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अंतिम मील कनेक्टिविटी पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जब बसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
प्राइवेट अपने व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आइए, क्योंकि लगातार सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, मेट्रो पे काम कर रही है। मेट्रो में आज की डेट में 65 लाख लोग रोजाना चल रहे हैं।
दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना में मृतकों की संख्या 5 हो गई है। इस मामले में 2 इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम दक्षिणी जोन के उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि एक सहायक इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को इमारत के निरीक्षण में हुई चूक के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अनुसार 13 पीड़ितों को इलाज के लिए जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इनमें से 5 को अस्पताल पहुंचने पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 5 की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ितों को हर संभव सहायता देने और मामले की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बिल्डर, अधिकारी या प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं है और नियमों का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और सभी घायलों को निःशुल्क और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्रीमती गुप्ता के निर्देश पर मेहरौली पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और दक्षिण जिले के जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में इस मामले की एक मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सदुलाजाब और आसपास के इलाकों में जर्जर खतरनाक और अवैध भवनों का तत्काल सर्वे और निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कई एजेंसियों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भी सभी जरूरी मेडिकल मदद और तुरंत राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर कैलाश के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने की घटना को भ्रष्टाचार का मामला बताया। उन्होंने कहा कि यह इमारत मूल रूप से 3 मंजिला थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में आज सड़क नंबर 320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई। एक रिपोर्ट।
मध्य उत्तर जिला के जिलाधिकारी SS परिहार ने बताया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि अधिग्रहित सरकारी भूमि है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सार्वजनिक सड़क के रूप में चिन्हित है। उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमण के कारण प्रभावित है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण के पूरे होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं के सुगम आवाजाही तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आकर्षिता सिंह।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। उनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। श्री शुक्ला ने बताया कि ये सीमा पार बैठे अपराधियों के निर्देश पर काम कर रहे थे और इन्हें दिल्ली और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में आज सुबह के समय हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विकसित मालवीय नगर संकल्प समारोह के दौरान जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल वितरित की। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास 4 मंजिला कमर्शियल इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत। शालीमार बाग स्थित हैदरपुर क्षेत्र में राइट ऑफ वे के अंतर्गत बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू। और जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।